खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू करें, याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये आरजी और वक्ती है। और खुदावंद का कलाम गवाही देता है कि इस दुनिया में दिन ब दिन बेवफाई बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जब जब इंसान खुदा का इनकार करके अपनी मनमर्जी करता है तो इंसान की अपनी मनमर्जी का जो बीज, जो फल पैदा होता है वो नाफरमानी, बेवफाई, नफरत, हसद और खुदा से दूरी होता है। सो आए चंद लम्हों के लिए खुदा के हुजूर झुकें और आज चंद एक बातें अपनी तरबियत और नसीहत के लिए सीखें। हालेलुया। खुदा बाप, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम हर धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो हमारे बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। और तेरा कलाम बेशक सच है और हमारी जिंदगियों के लिए रूहानी रोटी है। सो खुदा बाप, आज हम जो कुछ भी सीखें, तेरा पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे और ना सिर्फ सीखने और समझने और मालूमात हासिल करने वाले बने, बल्कि आज के दिन में हर लम्हों में उस पर अमल करने वाले बने। आए हुए तमाम बहन भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को बड़ी बरकत दे। तेरे शुक्रगुजार हैं तमाम मुसीबतों के लिए, दुखों के लिए, यीशु के नाम में आमीन। जैसा कि हम नए अहदनामा में से इफ़सियों के खत में से सीख रहे हैं, पालूस रसूल ईमानदारों की वो हालत बयान करता है कि एक वक्त में वो उस कब्रस्तान के ऐसे मुर्दे थे जो ना कुछ महसूस कर सकते थे, ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे। लेकिन वो बयान करता है, खुदा का बंदा पालूस रसूल, के खुदावंद यीशु मसीह ने, खुदा बाप ने अपनी मोहब्बत का इजहार और अपना रहम हम सब पर जाहिर किया। और इस हवाला को हम देख सकते हैं नए अहदनामा में, इफ़सियों 2 बाप उसकी 3 और 4 आयत में। और उम्मीद है कि आज हम चौथी आयत पर गौर करके, तीसरी आयत पर गौर करके चौथी आयत को शुरू करने वाले बनेंगे। मुझे खुद भी हैरानी होती है, लेकिन क्या किया जाए, खुदा का कलाम बहुत गहरा और पाकीज़ा है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज दुनिया भर में ईमानदार, खासकर ईमानदार, गैर ईमानदारों की बात छोड़ दें, ईमानदार दुनिया की बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे बजाय खुदा के कलाम को सुनने और पढ़ने में। ईमानदार जो यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, वो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में चलने की बजाय जिस्म की रहनुमाई को ज्यादा पसंद करते हैं, जिनमें हम सब शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शमूलियत मेरी अपनी है। क्योंकि हम इंसान होते हुए बहुत दफा अपनी मनमानी करते हैं, इसलिए पालूस रसूल कहता है तीसरी आयत में, इनमें हम सब भी, यहां पर वो बयान करता है हमारी माजी की हालत, के हम सब ऐसे मुर्दा थे, रूहानी तौर पर खुदा से दूर थे, खुदा से लातल्लक थे, बेतल्लक थे, खुदा से दूर थे। और कहता है इनमें हम सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के अरादे पूरे करते थे, और दूसरों की मानत तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो मसीह को, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है। आज मैं चाहता हूं कि हम देखें कि पालूस कहता है अपने जिस्म की ख्वाहिशों में। जिस्म की ख्वाहिशें क्या हैं? जिस्म के बारे में बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? किसी को याद है गलतियों 5 बाप उसकी 19वीं आयत? पालूस रसूल वहां पर बयान करता है कि जब हम जिस्म के मुआफक चलेंगे तो क्या फल लगेगा। ये कुछ इस तरह है, जब हम मकई का बीज बोएंगे तो क्या उगेगी? मकई। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि मकई से हमें कद्दू हासिल हो। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि मकई की जगह आंब उगें। सो पालूस रसूल कहता है जब हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे। पालूस रसूल यहां पर ईमानदारों की हौसला अफजाई करता है कि तुम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो। तुम एक वक्त में गुलाम थे गुनाह के, अब तुम गुनाह के गुलाम नहीं हो। जिसके बारे में वाजिया तौर पर पालूस रसूल कहता, मेरे साथ निकाले रोमियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 6वां बाप उसकी 12वीं आयत में वो इस बात को बयान करता है, पस गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करे बल्कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो। वो कहता है कि गुनाह का जोर खत्म हो चुका है, अब उसकी ख्वाहिशों के ताबे जिंदगी ना गुजारो। और फिर पालूस रसूल गलतियों 5 बाप उसकी 16वीं आयत में कहता है कि किस तरह हम इन जिस्म के गुनाहों से, जो जिस्म हम पर बादशाही करना चाहता है, हुक्मरानी करना चाहता है, अपनी मनमानी करना चाहता है, गालब आ सकते हैं। किस तरह? इसका हल बताता है गलतियों 5:16 में। मगर मैं ये कहता हूं, पालूस रसूल अपने तजर्बे को, अपनी उस हकीकत को बयान करता है और हुक्म के तौर पर कहता है मगर मैं ये तुमसे कहता हूं, जिसके लिए हम बढ़ाकर लफ्जों को कह सकते हैं, उसके रवैये को बयान कर सकते हैं। पालूस कहता है गलतियों की कलीसिया के ईमानदारों को, जो शीरियत पसंदी में, जो खुदा के फजल को इनकार करके शीरियत पसंदी में शीरियत के मुतहत जिंदगी गुजारना चाहते थे, उन ईमानदारों को जो खुदा के फजल को भूल चुके थे और कहते थे कि हम हुक्मों और ईदों और दूसरे कामों को करके खुदा के हजूर और इंसान के सामने रासबाज ठहर सकते हैं या रूहानी बन जाएंगे। पालूस रसूल उन सब को कहता है कि ये सब कुछ नामुमकिन है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पालूस कहता कि मैं खुद ऐसा शख्स था जो हर लिहाज से बेऐब था, हर लिहाज से जिसमें कोई खता नहीं पाई जाती थी शरीयत के मुताबिक, लेकिन जब कहता है कि मैंने खुदा के फजल को, यीशु मसीह की मोहब्बत को, उसके तरस को, उसके रहम को देखा, तो मैंने अपनी तमाम शरीयत की बातों को, अपनी तमाम उन नेकियों को क्या जाना? कूड़ा क्रिकेट। और दूसरी बात, शरीयत के हम कितने भी हुक्मों पर अमल कर लें, अगर एक ही हुक्म को तोड़ेंगे तो हम सब हुक्मों में क्या ठहरें? गुनाहगार ठहरें। सो इसीलिए पालूस उनको कहता है कि तुम अपने बुलावे के मुताबिक जिंदगी गुजारो, रूह के मुआफिक चलो। आज इस दुनिया में ये सबसे मुश्किल बात हुई पड़ी है ईमानदारों के लिए, हम सब के लिए, कि किस तरह हम रूह की मर्जी को पूरा करें, क्योंकि हमारा जिस्म, हमारी ख्वाहिश, हमारी इंसानी फितरत, हमारी पुरानी इंसानियत, पुराना इंसान, जो फितरती तौर पर मुनकर है, बेवफा है और वफादारी नहीं करता, उसे किस तरह काबू में रखा जाए? पालूस इसका जवाब देता है गलतियों 5 बाप उसकी 16वीं आयत में, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो। तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। रूह के मुआफक चलने से मुराद वो कहता है रूह के मतहत रूह की रहनुमाई में जिंदगी गुजारो। जैसे हम सबको याद है जब हम छोटे छोटे थे हमारे माँ बाप जब हम चलना सीख रहे थे तो हमारे पीछे पीछे वो आवाज वो हाथ रहनुमाई के लिए भरा रहता था कि कहीं हम गिर ना जाएं। बेटा वहां पर खतरा है वहां पर नंगे पांव ना जा वहां पर धूप है वहां पर अंधेरा है उस गली में उस चौक में उन लोगों में ना जाना नुकसान है। वैसे ही आज रूहुल कुद्दस आज भी ईमानदारों के ऊपर रहनुमाई के लिए निगाहबान के तौर पर मुख्तार के तौर पर और मां का किरदार करते हुए नजर आता है और बार बार कहता है ईमानदारों से कि ये जिस्म की ख्वाहिश ऐसे पूरा ना करो ये रूहुल के खिलाफ ऐसे पूरा ना करो। और पालूस रसूल चाहता है कि हम रूह के मुआफक जिंदगी गुजारें क्योंकि रूह का फल क्या है जब हम रूह के मुआफक चलेंगे तो जिस्म की ख्वाहिशों का फल जाहिर नहीं होगा। आप सबको याद है जिस्म का फल क्या है बलकारी ये जिस्म का फल है नापाकी ये जिस्म का फल है शहवत परस्ती यानी के बुरी सोचें ये जिस्म का फल है बुत परस्ती किसी तस्वीर की किसी मुजस्मे की किसी शख्स की किसी औरत की दौलत की खाने की या किसी इंसान की भी हो सकती है और बुतपरस्ती अपनी जात की भी हो सकती है। किसी किस्म का लालच भी बुतपरस्ती गिना जाता है। सो ये क्या है जिस्म का फल जादूगरी यानी के खुदा की बजाय किसी और पर यकीन करना के उससे हमारी मदद है किसी बदरू पर किसी गिराए हुए फरिश्ते पर किसी जिन पर बदकार रूप पर यकीन करना और जादूगरी के लिए मददगारी की उम्मीद करना ये गुनाह और जिस्म की ख्वाहिश है। अदावत यानी के जिसमें झगड़ा आ जाता है हसद आ जाता है गुस्सा आ जाता है तफरके आ जाती हैं जुदाइयां आ जाती हैं बिद्दतें आ जाती हैं बुगज ये सब क्या है जिस्म के फल। जब जब गैर ईमानदारों में ईमानदारों में ये बातें नजर आएंगी तो पता चल जाएगा कि हम रूह के मुआफक नहीं बल्कि जिस्म के मुआफक जिंदगी गुजार रहे हैं। चाहे वो ईमानदार कितना भी बड़ा हो चाहे वो ईमानदार गिरजाघर का पादरी हो अगर उसमें हसद गुस्सा तफरके जुदाइयां बिदती सोच लड़ाई झगड़ा और चुगली चिकारी और बेईमानी और लालच पाया जाता है तो वो पादरी चाहे कितना भी रूहानी हो वो रूह के माफक नहीं बल्कि जिस्म के माफक जिंदगी गुजार रहा है जिसमें हम सब शामिल है खा फैसल पादरी फैसल है खा वो 10 चर्चेस का बिशप है। बिशप का सादा मतलब है निगाहबानी करने वाला जिसके मुतहत बहुत ज्यादा कलीसिया या लोग काम करते हो। सो ये सब क्या है जिस्म के फल हैं। नशाबाजी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है किसी को खाने का नशा है किसी को पीने का नशा है किसी को पहनने का नशा है किसी को कुव्वत और ताकत हासिल करने का नशा है किसी को अपनी मनमानी का नशा है। और जैसे आपने सब में इस बात को याद होगा एक फिल्म है जो इंडिया की फिल्म है जो मीता बच्चन की है उसकी मिसाल देख लेते हैं। उसमें एक गीत है कि नशा अगर शराब में होता तो बोतलें नाचती। तो यहां पर खुदा का बंदा पालूस नशाबाजी जो बयान कर रहा है उस वक्त लोग गलतियों की कलीसिया में उनको जो नशा था वो नशाबाजी कैसी थी शराब की हिर्स और फिर तकब्बर और फिर जादूगरी बुत परस्ती का नशा, ताकत और कुव्वत हासिल करने का नशा, अपने आप को बढ़ाने का नशा और किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी किस्म की भलाई बुराई करने का नशा, ऐसी ख्वाहिश ऐसी लत जो इंसान को मौत के गवाहरे पर ले जाती है। नाच रंग जिसमें आज हम दुनिया का नाच रंग देखते हैं, इंडिया में हिंदू लोगों का जो नाच है उनका ये क्या है, कारोबार है। लेकिन यहां पर जो गलतियों की कलीसिया को पालूस रसूल कह रहा है ये जिस्म का फल, उस वक्त लोग देवी देवताओं के सामने नाच नाचते थे जिसमें वो अपने जिस्म को काटते थे, जिसमें वो अपनी कुर्बानियां और जोर जोर से चलाना और मुख्तलिफ किस्म का डांस और नाच रंग करते थे। और पालूस रसूल कहता है ये सब जिस्मानी बातें हैं, इसलिए वो कहता है हमें इन सब से परहेज करने की जरूरत है, इन सब से दूर रहने की जरूरत है, इन सब कामों को खुदा और उसकी बादशाही में कोई भी कबूलियत या पसंदीदा बात नहीं कहा गया। इसलिए कहता है रूह के मुआफक चलें। जब रूह के मुआफक चलेंगे तो क्या होगा, रूह का फल क्या है, मोहब्बत। मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत कैसी, बगैर किसी शर्त के, जिसमें कोई तकाजा कोई अमर कोई बात कोई अपना फायदा नहीं होगा। खुशी, ऐसी खुशी जो दुनिया के रुपए पैसे से नहीं बल्कि खुदाई खुशी है। इत्मीनान, ऐसा इत्मीनान जो ऐसे नहीं कि किसी के घर में बहुत ज्यादा फसल हुई और उसने कहा कि मेरे पास बहुत कुछ है, इत्मीनान ऐसा इत्मीनान नहीं बल्कि खुदाई इत्मीनान। तहम्बल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं करती। और ये कब होगा, जब हम इस बात को याद रखेंगे, 24वीं आयत, और जो मसीह यसु के हैं, जो यसु मसीह के मुतहद हैं, यसु मसीह से प्यार करते हैं, उनके लिए पालूस कहता है और जो यसु मसीह के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों यानी के आदतों उसकी कुव्वतों रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है, यानी के सलीब के मुतहद कर दिया, सलीब के ऊपर जैसे यसु मसीह ने खुदा की मर्जी को बढ़ोती थी, उन तमाम ईमानदारों की भी वैसे ही हालत है क्योंकि उन्होंने अपना जिस्म अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को ना कही है। इसलिए हमें हर रोज अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी नहीं गुजारनी, जैसे पालूस रसूल कहता है कि तुम पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादा पूरे करते थे। हमें ऐसा नहीं करना, हमें नए इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत है। सो खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी दुआओं में खासकर याद रखें स्कूल के सारे काम को, इस सारी हफरा तफरी को जो सिर्फ और सिर्फ अबलीस की तरफ से और इंसानों की अपनी हसद भरी ख्वाहिशों से बुगज भरी ख्वाहिशों से है, कि खुदावंद इस सारे काम को पाया तकमील तक पहुंचाए ताकि इस कलोनी के बच्चे बरकत पाएं, इस कलोनी के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ इस जमीन पर खुदावंद के लिए काम करने वाले बने। आए हम खुदा के जुर झुके और दुआ करें। खुदा बाप आज के पैगाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम जिस्म के कामों में नहीं बल्कि रूह के कामों में मगन हो। आए हुए तमाम बहन भाइयों बुजुर्ग बच्चों को बड़ी बरकत दे और चर्च के सारे कामकाज, सारे स्कूल में सारी तामीर के काम में सारे इस मसले में खुदावंद जितने भी लोग शामिल हैं सबको हिकमत और दनाई दे ताकि ये मसला हल हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए और सुलह और सफाई के साथ तेरे नाम की तारीफ हो। यसु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।